अध्याय 10 का शेष भाग, पृष्ठ संख्या 145, 4 जून 1946 और जनवरी 1947 के बीच एस्केप ने कई अन्य निर्देशों के द्वारा 2 लाख से अधिक जापानियों का सैन्यवादी एवं साम्राज्यवादी विचारों के लिए शुद्धिकरण किया। लगभग 1300 समुदायों को भंग कर दिया गया और अनेकों जापानियों पर सरकारी पद प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रशासन विधि के पीछे यह धारणा थी कि एक औपचारिक पद या उपाधि का मतलब है वास्तविक जिम्मेदारी। इस धारणा का केवल एक मामले में उल्लंघन किया गया और वह था सम्राट के साथ एस्केप का व्यवहार। सम्राट के नाम पर सब औपचारिक सरकारी नीतियां बनाई जाती थी और उन्हें कार्यान्वित किया जाता था। यदि औपचारिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर अमल किया जाता तो सम्राट का सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता, लेकिन सम्राट को छोड़ दिया गया क्योंकि एस्केप अधिकारियों को यह डर था कि यदि उन्होंने ऐसा न किया तो जापान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती थी। वैसे भी एस्केप अधिकारियों को इस बात का एहसास था कि असली शक्ति सम्राट के हाथों में नहीं था, लेकिन इस तर्क का दूसरा भाग सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अनेक स्थानीय स्तरों पर ऐसे गांवों के मुखिया एवं नगरों के मेयर थे जिन्हें केवल इसलिए सजा दी गई कि वह इन पदों पर कार्यरत थे, शुद्धिकरण की श्रेणियां बनाए एवं कठिन कार्य किया था। उसमें कुछ असमानताओं का आ जाना स्वाभाविक था। लगभग 2 लाख शुद्ध किए गए व्यक्तियों की गतिविधियों पर नज़र रखना और भी कठिन कार्य था। ऐसे व्यक्तियों को उनके ओहदों से केवल हटा देने से ही उनका प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता था। 1947 तक इन शुद्ध किए गए व्यक्तियों के प्रभाव पर नियंत्रण करने की बजाय उन्हें फिर से बहाल करने की कोशिशें की जा रही थीं। जापान का सही विसैनिकरण दीर्घगामी सुधार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था जो भविष्य में युद्ध के प्रति जापानियों के रुख को बदलना चाहता था। इस दिशा में एक विशेष कदम था जापान के नए संविधान का अनुच्छेद 9, जिसमें कहा गया कि जापानी लोग एक प्रभुसत्तात्मक अधिकार के रूप में युद्ध का और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े निपटाने के साधन के रूप में बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी का हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वार एज ए सोवरेन राइट एंड द थ्रिएट और यूज ऑफ फोर्सेस एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि स्थल नौ और वायु सेनाओं को अभी नहीं रखा जाएगा और राज्य के झगड़े के अधिकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। वार पोटेंशियल डेट इज लैंड सी एंड एयर फोर्सेस विल नेवर बी मेंटेन्ड एंड द राइट ऑफ बेलिजरेंस ऑफ द स्टेट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। आधिपत्य अधिकारियों ने रचनात्मक रूप में जापान के राजनीतिक ढांचे को सुधारने की कोशिश की। जनरल मैकआर्थर ने मेजी संविधान में तय की गई विधि के अनुसार संवैधानिक सुधार करने की कोशिश की। इस विधि के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन का कार्य शाही फरमान के द्वारा ही आरंभ किया जा सकता था, जिसे बाद में डायट द्वारा स्वीकृति दी जाती थी। आधिपत्य अधिकारियों द्वारा निरंतर दबाव डाले जाने के कारण जापानी सरकार ने 1945 की पतझड़ ऋतु में संविधान संशोधन का कार्य आरंभ किया, लेकिन यह कार्य उम्मीद से कहीं कम हो पाया और नए संविधान के प्रारूप का अधिकतर भाग आधिपत्य अधिकारियों के सीधे सुझावों के फलस्वरूप तैयार हुआ। संविधान के नए प्रारूप की घोषणा 6 मार्च 1946 को की गई। उसके बाद इस पर डायट में बहस हुई तथा 3 मई 1947 को इसे लागू कर दिया गया। तकनीकी तौर पर नया प्रारूप पहले के मेजी संविधान का ही संशोधित रूप था, लेकिन असल में यह एक बुनियादी संशोधन था। नए संविधान की 31 धाराओं में जापान के अधिकारों की गारंटी दी गई, न्यायपालिका को संवैधानिक दृष्टि से स्वतंत्र कर दिया गया, धर्म शिंतो को राज्य से अलग कर दिया गया और महिलाओं एवं युवा वर्ग को देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का हक दिया गया। स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत को भी संविधान में लिखा गया। सम्राट को अपनी दिव्यता डिविनिटी त्याग देने के लिए बाध्य कर दिया गया। जापान के सम्राट को सूर्य देवी का सीधा वंशज होने के मिथक को शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रसारित किया गया था और उसे जापान के अनूठे होने का आधार बनाया गया था। हिरोहितो ने 1946 के नववर्ष दिवस पर एक रेडियो प्रसारण में यह कहकर अपनी दिव्यता का त्याग किया कि जिन बंधनों ने उसे उसकी जनता के साथ जोड़ा हुआ था उसका आधार आपसी भरोसा प्रेम एवं आनंद था और वे केवल दंत कथाओं या अंधविश्वास पर नहीं टिके थे। म्यूचुअल ट्रस्ट लव एंड रिस्पेक्ट एंड डू नॉट रेस्ट ऑन मीर लीजेंड्स एंड सुपरस्टिशन। नए संविधान के अंतर्गत सम्राट के हाथों में प्रभुसत्ता लेकर जनता के हाथों में दे दी गई। अब सम्राट जनता की एकता एवं राज्य का प्रतीक, ए सिंबल ऑफ स्टेट एंड यूनिटी ऑफ द पीपल बन गया। मेजी संविधान के सिद्धांतों से यह बहुत दूरगामी परिवर्तन था। डायट में सदन तो दो ही बने रहे, लेकिन पहले की अभिजात सभा को एक निर्वाचित पार्षद सभा के रूप में बदल दिया गया। मुख्य विधायी अधिकार निम्न प्रतिनिधि सभा के पास थे। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डायट के प्रति उत्तरदायी था। युद्ध पूर्व के उस सैन्य अधिकार को समाप्त कर दिया गया जिसमें किसी भी मंत्रिमंडल को बनाया या बिगाड़ा जा सकता था, क्योंकि सेना द्वारा अपना प्रतिनिधि मंत्रिमंडल न भेजे जाने पर वह मंत्रिमंडल नहीं बन सकता था। इसी प्रकार गैनरों जैसी संस्थाओं को भी भंग कर दिया गया। जनता पर निकट का नियंत्रण रखने वाले गृह मंत्रालय एवं पुलिस जैसी संस्थाओं को नए राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। इसके साथ साथ उनके अधिकारों में भी कमी कर दी गई। श्रम कानूनों में श्रमिकों के संगठित होने और सामूहिक कार्यवाही करने के अधिकार को भी सुनिश्चित कर दिया गया। जिन प्रगतिशील तत्वों को सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए कारावास में डाल दिया गया था उन्हें रिहा कर दिया गया। पृष्ठ संख्या 147। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन के लिए किए गए कुलीनवादी शिक्षा प्रणाली। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन किए गए कुलीनवादी शिक्षा प्रणाली इलिटिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जिसके द्वारा प्रजा में अंध आज्ञाकारिता एवं समर्पण की भावना पैदा की गई थी, उसे आधिपत्य शक्तियों के अधिकारियों ने बदल दिया। इस परिवर्तन के लिए यह तर्क दिया गया कि सम्राट के प्रति श्रद्धा और जापानियों के अनूठे होने के विचारों को अत्यंत नियंत्रित शिक्षा प्रणाली के द्वारा फैलाया गया था। आधिपत्य शक्तियों द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अमेरिकी प्रणाली पर आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया जिसमें 6 वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उसके पश्चात क्रमशः 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च शिक्षा तथा फिर 4 वर्ष की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का प्रावधान किया गया। नई प्रणाली में सह शिक्षा को लागू कर दिया गया। शिक्षा के विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय शिक्षा मंडलों की रचना ने जनतंत्रीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। नई शिक्षा प्रणाली से यह भी उम्मीद की गई कि वह एक ऐसी सरकार बनाने में मदद करे जो न केवल शांतिमय हो बल्कि अमेरिका की ओर मैत्री का रुख भी अपनाए। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार एवं परिवर्तन किए गए। आत्मसमर्पण के समय जापान के लगभग 20% संसाधनों की क्षति हो चुकी थी। यह माना गया कि चूंकि जापान की औद्योगिक क्षमता उसकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उसकी ऐसी क्षमता को कम कर देना चाहिए जिसने उसे एशिया का प्रमुख औद्योगिक देश बनाया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जायबात्सु को भंग कर दिया गया तथा विकेंद्रीकरण एवं जनतंत्र लागू करने के लिए व्यापक भूमि सुधार किए गए। एस्केप ने जायबात्सु की संपत्ति को जब्त कर लिया तथा नियंत्रक कंपनियों होल्डिंग कंपनीज को भंग कर दिया गया। युद्ध से लौटने के बाद जब सैनिक अपने अपने गांवों को लौटे तो वहां की आबादी बढ़ गई और आम कृषकों की दशा जो पहले ही काफ़ी दयनीय थी और भी बिगड़ गई। भूमि सुधार ने गांवों में इस संकट की स्थिति को टालने में मदद की। भूमि का परिसीमन लैंड सीलिंग कर दिया गया और बड़े भूस्वामियों से भूमि छीन ली गई। कृषि सहकारिताओं एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की स्थापना कर दी गई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता कायम करने में काफ़ी मदद मिली। एस्केप के बदलती नीति का आरंभ 1946 में तब हुआ जब जापान को खाद्य सहायता प्रदान की गई। 1948 के मध्य तक उद्देश्य स्पष्ट तौर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर जापान के पुनर्निर्माण का हो गया था। एस्केप के भूमि सुधार कार्यक्रम के फलस्वरूप भूस्वामी कृषकों की संख्या 1947 में 55.7% से बढ़कर 1949 में 88.9% हो गई। इस काल में आदि भूमि के स्वामी कृषकों की संख्या 56.5% से बढ़कर 88.9% हो गई। पृष्ठ संख्या 148। कई अमेरिकी नियोजकों तथा जापानी नेताओं को डर था कि कहीं जापान में सामाजिक क्रांति न हो जाए। वे जापान को चीन में साम्यवाद की उभरती शक्ति के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे। इस दिशा में बदलाव को आमतौर पर उल्टी दिशा रिवर्स कोर्स कहा जाता है। अगस्त 1950 में एक राष्ट्रीय पुलिस आरक्षी नेशनल पुलिस रिजर्व की स्थापना की गई। सितंबर 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि जापान को उसकी रक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए। 28 अप्रैल 1952 को आधिपत्य समाप्त हो गया। अब मुख्य उद्देश्य जापान को हथियार जमा करने से रोकना नहीं बल्कि उसे अपनी सशस्त्र सेनाओं को इस तरह तैयार करने को प्रोत्साहित करना था कि वह पूर्वी एशिया में शांति, स्थिरता एवं लोकतंत्र कायम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके।